वर्तमान से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। भारतीय संस्कृति में चार पर्व महान माने गए हैं। जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली अपने पर्युषण पर्व हैं, अष्टान्न का है, इन पर्वों की बात नहीं कर रहा हूं। ये चार पर्व भारत में लगभग सभी लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन की बात अपन को करनी है ना, देखो सलमान खान भी राखी बनवा रहा है, उसे भी उसकी बहनें राखी बांधने जा रही हैं। अब तो मुझे एक कह सकता हूं कि भारतवर्ष में न केवल हिंदू और जैन बल्कि मुसलमानों में भी इस पर्व की पकड़ है। तो ये जो चार पर्व हैं और भारत में चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो मैं इन चार पर्वों को चार वर्णों से जोड़ता हूं। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली व्यापारियों का पर्व है, वैश्यों का पर्व है और होली शूद्रों का पर्व है। ब्राह्मणों का पर्व क्यों कहता हूं रक्षाबंधन को मैं? ब्राह्मण माने धर्मगुरु, जो धर्मोपदेश देते हैं, जो धर्म का पालन अपने जीवन में स्वयं करते हैं और दूसरों को उस रास्ते पर लगाते हैं। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म माने शुद्धात्मा को जानता है वो ब्राह्मण है। तो चौमासे का समय है और चौमासे में पढ़ने वाला ये सबसे पहला पर्व है। इस पर्व का ऐसा मौसम रहता है कि किसानों ने खेतों पर बोकर सब काम से निबट गए हैं, अब खाली इंतजार करते हैं कि फसल उगे। पानी भी नहीं देना है, अपने आप आकाश देता है। व्यापारियों का व्यापार बंद हो जाता है क्योंकि शादी विवाह बंद हो जाते हैं। ज्यादा व्यापार तो शादी विवाह की वजह से चलता है ना, पर आवागमन के साधन भी नष्ट हो जाते हैं, रास्ते खराब हो जाते हैं, नदियों में आ जाता है, पुल नहीं हो तो यहां से वहां जा नहीं सकते हैं, इसलिए भी व्यापार डिस्टर्ब हो जाता है। और आप ये जानते हैं जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं हजारों वर्ष से आज तक हिसाब लगा के देख लेना, तो सब लड़ाइयां दिवाली के बाद होती हैं, दिवाली के पहले नहीं होती। अब उसका सबसे बड़ा जबरदस्त कारण ये है कि बरसात की वजह से रास्ते ऐसे हो जाते हैं कि सैनिकों को भी यहां वहां जाने में और वो सब असुविधाजनक हो जाता है। इसलिए इस चौमासे में सब लोग खाली हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो ब्राह्मण, व्यापारी हैं वो, किसान हैं वो, जिनको लड़ना है सैनिक हैं वो, इसलिए सबका काम बंद हो जाता है तो धर्म गुरुओं का काम दिन दूना रात चौगना बढ़ जाता है। क्योंकि बाकी के दिनों में लोग अपने काम में रहते हैं तो धर्म की बात सुने कौन? पर्युषण में जितने लोग आते हैं अपने प्रश्न सुनने, बाकी के दिनों में उतने कहां आते हैं? इसलिए सारा वातावरण धर्ममय हो जाता है, सबकी दुकानें बंद हो जाती हैं और पंडितों की दुकानें चल निकलती हैं। साधु संत भी इसी बरसात के कारण जीव जंतुओं की उत्पत्ति ज्यादा होने से एक जगह पर ठहरते हैं, चौमासा होता है तो उनको भी अपनी बात कहने के लिए लंबा अवसर मिलता है। नहीं तो एक एक गांव में घूमते रहें, एक एक व्याख्यान दें तो उपदेश ही दिया जा सकता है, तत्व तो समझाया नहीं जा सकता। तो चारों तरफ का वातावरण धर्ममय हो जाता है। आपने देखा होगा दशहरे पर क्या होता है कि जब बरसात बंद हो जाती है, नदियों की बाढ़ उतर जाती है, तो क्षत्रिय लोग अपने जंग लगे हथियारों को संभालते हैं, पहुंचते हैं, झाड़ते हैं, जिसे वो उनकी पूजा करना कहते हैं ना, और दशहरे के जुलूस में उसका प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो लड़ने लायक रहे के बेकार हो गए हैं, उनको सक्रिय रहना चाहिए ना, इसलिए वो क्षत्रियों का पर्व है। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, और लड़ाई के लिए तैयारी करने लगते हैं इसलिए वो क्षत्रियों का पर्व है। दीपावली के बाद नौमी से शादियां खुल जाती हैं, बोलते हैं दीपावली के बाद की जो नौमी होती है ना, उससे शादियां होना शुरू हो जाती हैं। तो व्यापारी भी अपने तराजू मराजुओं को पहुंच पहुंच के साफ करके हैं, गज वगैरह बिल्कुल उसी पूजा करते हैं ना दीपावली, कोई भी धर्म वाले हों वो भी तैयार हो जाते हैं। और इस तरह है जो सर्दियों के दिन आते हैं उसमें क्षत्रिय भी सक्रिय, उन्हें भी काम है, व्यापारी भी सक्रिय, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो धर्म गुरुओं की बात कौन सुने, है ना। और अंत में होली का पर्व आता है, सर्दियां कम हो जाती हैं जिससे लोग परेशान थे, गर्मियां अभी शुरू नहीं हुई हैं, एकदम सबसे बढ़िया मौसम है, और व्यापारी कमा कमा के लौट के अपने घर आए हैं, उन्हें भी मौज मस्ती करने का बहुत सूझ रहा है, छत्री भी जीत जीत कर आए हैं सैनिकों को, तो उन्हें भी थोड़ा सा आराम चाहिए और मौज मस्ती चाहिए, क्यों। इसलिए होली को मैं कहता हूं शूद्रों का पर्व है, शूद्रों का माने शूद्रों का नहीं, जब चारों ही वर्ण शूद्र बन जाएं ऐसा पर्व है ना, बुढ़े लोग भी रसिया हो जाएं ऐसा पर्व, समझ रहे ना भैया, चाहे ब्राह्मण हो माने चाहे धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे क्षत्रिय हो, अभी तो लड़ने निकल गए थे घर में, बाल बच्चे घर में थे, क्यों, अब बसंत ऋतु आ गई है, सब लौट के आ गए हैं घर में, तो यहां चारों वर्ण शूद्र हो जाएं और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगे, कीचड़ माने वही कीचड़ नहीं, ये गाली गलौज भी तो कीचड़ है ना, हंसी मजाक भी तो कीचड़ है ना, अपने गंदे भावों का प्रदर्शन करने लग जाएं, तो समझ लेना सभी शूद्र हो गए। और इस तरह वो हंसी मजाक खेलने का मस्ती का पर्व है ना, राग रंग का जो पर्व है वो होली है। तो इस तरह भारतीय संस्कृति में चार महापर्व अपनी प्रकृति के कारण महापर्व हैं, ये किसी कहानी से इनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हर धर्म वालों ने हर पर्व के साथ कोई ना कोई कहानी जोड़ ली है, वे कहानियां झूठी हैं कि सच्ची हैं ये ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, उल्टा अर्थ नहीं समझना, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि ये जो इनकी प्रवृत्ति है वो प्रकृति प्रदत्त है। इनमें से चार पर्वों में दो पर्व सात्विक हैं, अहिंसक हैं और व्यापारियों से संबंधित हैं, आज का ये जैनी व्यापारी वर्ग ही ज्यादा है, ख्याल में ना, तो इसलिए इसने एक रक्षाबंधन वो धर्म पर्व था, और एक दीपावली दो चुन लिए, इसलिए जैनियों ने दशहरा और होली को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि दशहरा हिंसक माने देश का पोषक पर्व है, और होली राग रंग माने राग का पोषक पर्व है, तो बीतरागी जैन धर्म में से कैसे स्वीकार कर सकता था, इसलिए उसने कोई कहानी भी नहीं गढ़ी दशहरे के संबंध में, होली के संदर्भ में जो कहानियां चलती हैं वो हिंदू धर्म की प्रचलित कहानियां हैं, और वही हम लोग भी कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जैन धर्म से संबंधित कोई कहानी इससे नहीं है, कि दोनों पर्व जैनियों के पर्व नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश का बहुत बड़ा समुदाय इन्हें मनाता है, 1 अरब लोग हैं, उनमें जो 1 करोड़ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 50 लाख है माने 0.5% है, उनका तो क्या होगा, आप जानते हैं, इस देश में 1 अरब लोगों में मुसलमानों की संख्या 20-22 करोड़ है, फिर भी सलमान राखी बांध रहा है, मेरा मतलब मुसलमान भी इतने प्रभावित हो रहे हैं उससे, ख्याल में है ना। और होली कौन नहीं खेलता है हिंदू मुसलमानों में। ये बहुमत का अल्पमत पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो हम इतने अल्पमत वाले हैं कि हम पर वो होली और दशहरे का रंग भी चढ़ जाता है, पर हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि ये पर्व हमारे हैं या हमारे नहीं हैं। और हमारे नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये हिंसा के पोषक हैं, ये राग द्वेष के पोषक हैं, इसलिए ये पर्व हमारे नहीं है। अब दो पर्व हमारे रहे, इसलिए मैंने अपनी किताब में दो पर्वों की चर्चा की, एक का नाम रक्षाबंधन और एक का नाम दीपावली। रक्षाबंधन पर्व की चर्चा अपन को आज करना है, कभी दीपावली का मौका आएगा तो दीपावली की चर्चा दीपावली के दिन करेंगे। वैसे किताब में तो सब लिखा है, कैसेट में भी सब उपलब्ध है। रक्षाबंधन माने क्या? रक्षा का भाव भी बंध का कारण है, साफ लिखा ना इसमें, रक्षा बंधन। वो रक्षा सूत्र है और वो बहनों को भाई बहने भाइयों को पहनाती हैं, तुम हमारी रक्षा करना, क्यों कहा है इसमें, कहा है रक्षा बंधन शब्द में है? क्यों? अब तो बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है? बंध के कारणों की मीमांसा चल रही है, प्रदूषण आने वाला है, सुलह कान लग गए हैं, क्यों? तो वहां पर कौन सी मीमांसा होती होगी, किसकी चर्चा होती होगी? बोलो साहब महावीर जी, यही होती होगी, बंध का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है। तो दूसरों को मारने का भाव तो बंध का कारण है ही, पर बचाने का भाव भी बंध का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है, है ना। सुबह निकला था ना, दादा के प्रचन में आ रहा था दो दिन से, कि वो धर्म, वो क्रिया अफल है, धर्म की क्रिया अफल है और राग देश की क्रिया सफल है। तो संसार के होने की बात है, तो धर्म जो है संसार करता ही नहीं, धर्म जो है संसार में बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। क्यों? कि धर्म से ना पुण्य बनता है ना पाप बनता है। वो पुण्य पाप तो दोनों शुभ अशुभ राग से बन जाते हैं। तो धर्म तो नहीं बंधे, जिससे कुछ नहीं बंधे उसका नाम है ना। तो ये बंधने में काम में अफल है, तो हमको लगता है ये तो बेकार गया कि हाँ गया, हम तो आपको स्वर्ग की इच्छा है ना, तो धर्म से नहीं मिलेगा। बोलो कोई सुन सकता है, कोई सुना सकता है? धर्म से मनुष्य गति नहीं मिलेगी, देव गति नहीं मिलेगी, धर्म से तो अकेला मोक्ष मिलेगा। शांति समझ में आई बात क्या? क्योंकि संसार में वो अफल है, समझ गया? तो संसार में शुभ भाव सफल है और अशुभ भाव भी सफल है, क्योंकि उससे नर्क निगोद मिलेगा, तुरंत गति मिलेगी, दंडे पड़ेंगे, क्या यहां लोग दंडवत करेंगे, इतना ही तो फर्क है। लेकिन ये दोनों संसार है ना, तो संसार रूपी फल प्राप्त करने में शुभाशुभ राग सफल हैं और शुद्धोपयोग रूप धर्म की क्रिया अफल है। वो चर्चा शुरू हो गई, ये भी यही करे कि रक्षा का भाव बंध का कारण है, इसलिए इस पर्व का नाम है रक्षा बंधन। कि साहब ये जो कहानी से तो ये बात सिद्ध नहीं होती है, हमको समझ में कहीं नहीं आती है ये रक्षा का भाव बंध का कारण है। तो जो कहानी अपने यहां प्रचलित है मुनिराज विष्णु कुमार की, वैसी ही कहानी हिंदू धर्म में भी प्रचलित है, और दोनों कहानियों में इतनी विचित्र समानता है, यहां रक्षा करने वाले विष्णु भगवान है तो वहां विष्णु कुमार मुनि है, क्या समझे ना? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये नाम भी तुमको काल्पनिक जैसे नहीं लगते हैं, कहानियां बहुत हैं शास्त्रों में और एक्चुअल भी हैं और काल्पनिक भी हैं। फिर ऐसा आता ना कि देश का नाम जनक जनकपुर, राजा का नाम जनक और लड़की का नाम जानकी, क्यों? ये तो संभव हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि पति का नाम रूपचंद और पत्नी का नाम रूपमती तो ऐसा भी होगा, होता होगा, लेकिन उनको कोई विवेक और रूप की बात कहनी है तो वे नाम भी ऐसे रखते थे, उससे उसमें उसकी काल्पनिकता। विष्णु माने होता है रक्षा करने वाला, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो चूंकि रक्षा का प्रकरण है तो वहां विष्णु भगवान आए, शंकर भगवान नहीं आए। मारने का काम होता तो शंकर भगवान आते, बनाने का काम होता तो ब्रह्मा जी आते, और वहां विष्णु भगवान आए तो हमारे यहां भी विष्णु कुमार मुनि, वे भी विष्णु कुमारी, क्यों? और जिन्होंने वाद वाद किया था उनका नाम श्रुत सागर, उनका नाम विष्णु कुमार नहीं, क्योंकि वाद वाद तो जो शास्त्रों में पारंगत है वही कर सकता है ना, ये श्रुत सागर तुम्हें उपाधि सी नहीं लगती है? ऐसा नहीं लगता है कि मुनि राज का नाम कुछ और होगा? लेकिन वे शास्त्र थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, पढ़ाते थे सब मुनि राजों को, और उनकी प्रतिभा को देखकर और उन्हें सब लोगों ने श्रुत सागर की उपाधि दी थी, है ना। और एक मुनिराज है अकंपन, जो बिल्कुल नहीं डिगे अपने ध्यान से किसी भी परिस्थिति में, रंच मात्र भी नहीं कपे। ये श्रुत सागर भी कांप गए ना, उपयोग अंदर से बाहर आ गया ना, विष्णु कुमार तो और ज्यादा कांप गए, वे तो कपड़ा ही मुनिपद छोड़ के ही बाहर आ गए। उचक इनने भी कोई महान काम तो नहीं किया था, इन्होंने भी अपनी वचन गुप्ति भंग की थी, इनने भी अपनी भाषा समिति का नियंत्रण खो दिया था, किन्होंने? श्रुत सागर ने। लेकिन अकंपनाचार्य बिल्कुल अकंपन रहे। तो तीनों नाम भी उन मुनिराजों की, तीनों की जो क्वालिटी है वो बताती है, है ना। देखो हमारी सवाल, एक कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कहानी तो बच्चे बच्चे को याद है, और कम से कम मेरा उपयोग कहानी सुनाने में तो नहीं होना चाहिए, और आप लोगों का उपयोग कहानी सुनने के लिए तो नहीं होना चाहिए, वो तो पढ़ सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन की कहानी में तीन तरह के मुनिराज हैं, तीन मुनिराज नहीं, तीन तरह के मुनिराज हैं। एक वे अकंपनाचारी जिनके प्रतिनिधि हैं, कि कोई आए नमस्कार करे, गालियां बके, कुछ भी करे, उपसर्ग करे, तो भी आत्म ध्यान से कपे नहीं, डिगे नहीं, वो ऐसे अकंपनाचारी जिनके प्रतिनिधि हैं वो 700 मुनिराज, एक ग्रुप। दूसरे वो मुनिराज, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं, रास्ते ही चलते भिड़ गए, आखिर अपनी विद्वत्ता का कितना जोश होगा उन्हें, अगर पूरा भव प्रभव जानते हो तो भगवान ही से क्या करना, जरा सा आध्यात्मिक हो जाता है ना तो वो आदमी हो जाता ना, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, और उन्हें तो वो अवधि ज्ञान था जो पूरा भव की सब बातें बता दी थी ना उनकी, क्यों? तो दूसरे वे मुनिराज जो अपने मार्ग से च्युत हो गए लेकिन मुनिपना खंडित नहीं किया, और तीसरे वे मुनिराज के जिनको रक्षा करने के भाव के कारण मुनिपद छोड़ना पड़ा और बाद में उसका प्रायश्चित लेना पड़ा। और आप जानते हैं दीक्षा छेद इस सबसे बड़ा दंड होता है मुनिराजों को। दीक्षा छेद का मतलब क्या है कि एक मुनिराज 20 वर्ष से दीक्षा लिए, फिर दूसरे को 19 वर्ष हो गए, तीसरे को 18 वर्ष, चौथे को 17 वर्ष, तो जो कम सीनियर है ना वे अपने से अधिक सीनियर को नमस्कार करते हैं, ख्याल में है ना। और तुम्हारे यहां भी होता है ना विद्यालय में सीनियर जूनियर सीनियर नहीं करें तो वो रैंकिंग कहां से आई, यहीं से तो आई है, वे भी रैंकिंग लेते करते होंगे ना, जूनियर को विनय सिखाना है ना, क्यों? तो वो उनकी दीक्षा छेद हो गई माने वो सबसे ज्यादा जूनियर हो गए। तो जो 20 साल तक के दीक्षित लोग आज तक उन्हें नमस्कार करते थे, अब इन्हें उन सबको नमस्कार करना पड़ेगा। उन वे लोग इनके शिष्य भी हो सकते हैं। क्यों? इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा, किस कारण, कौन सी गलती की थी उनने? क्यों? रक्षा ही करने का भाव तो किया था, वो भी अपनी बहन का थोड़ी किया था, न पत्नी का किया था, न गांव का किया था। क्यों? किसका? मुनिराजों, सर्वश्रेष्ठ। क्यों? मुनिराजों की रक्षा करने का भाव आया तो दीक्षा छेद का दंड। क्यों? और उन्होंने कहा कि ये मुनि बेस में ये काम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? ये बात हमारी समझ में आने जैसी नहीं है कि यदि हमें कोई ऐसा काम करना है जो मुनि पद के योग्य नहीं है, गृहस्थ में ही उचित हो सकता है, तो हमें मुनि पद छोड़ के वो काम करना चाहिए। हम तो वो अनुचित काम मुनिराज विष्णु कुमार के नाम पर, उनने ऐसा किया था, हम भी करेंगे, हम भी सबकी रक्षा करेंगे, लेकिन उनने मुनि पद छोड़ दिया था ना, तुम भी छोड़ दो, पहन लो धोती कुर्ता, राजाओं मैदान में। क्यों? अरे भाई, विष्णु कुमार तो उस काम को इतना बड़ा दंड के योग्य मानते थे कि जिसे संघ से निकाल दिया जाए। अरे दीक्षा छेद हुई तो संघ से नहीं निकला, क्यों बोलो? अब हमारे अपने मन को तटोलें कि हमारी दृष्टि में किन मुनिराजों की महिमा है सबसे ज्यादा, तीन ग्रुप वालों में से। अब सब जगह देखो तो बस विष्णु कुमार मुनि की पूजा होती है हर रक्षाबंधन के दिन सारे देश में। अब थोड़ी थोड़ी जगह अकंपन की भी होने लग गई है मेरे व्याख्यान सुन सुनकर। अकंपन की कोई पुरानी पूजन भी नहीं होगी, नई बन गई होगी, समझ गया ना? अकंपन तो बेचारे, क्यों? जो जाए बाजार में पिटता ही रहे, पिटने वाले तो बेचारे ही होते हैं ना, क्यों? तो उनने तो पिटने के अलावा क्या काम किया? उपसर्ग आया, जो कुछ भी स्थितियां बनी उसे भोगा ही भोगा है ना, तो वो तो हमारी दृष्टि में बेचारे दिखते हैं। और मुंह तोड़ जवाब देने वाले सुत सागर उनसे हमें बहुत बड़े और बहुत महान दिखते हैं। क्यों? देखो, गलती तो उनने की थी, ये हमारा हृदय भी कहता है, हमारा हृदय नहीं सबका हृदय कहता है, अन्यथा उनके बचाव के रास्ते क्यों निकाले जाते? कि वो तो उनसे बाद बाद इसलिए किया, कहानी तो आपको मालूम ही है ना, बाद बाद इसलिए किया क्योंकि उन्हें आचार्य की आज्ञा का पता नहीं था। आचार्य ने आज्ञा दी थी ना कि वो मंत्री और राजा आएंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, वे नमस्कार करेंगे तो आशीर्वाद तक नहीं देगा, अपने ध्यान में मगन रहेगा। तो आचार्य की तो ये आज्ञा थी ना, उन्हें आज्ञा का उल्लंघन किया कि नहीं किया? कैसा आज्ञा का उल्लंघन, तो क्या अभी तो वहां गए हुए थे तो उन्हें पता ही नहीं था। तो मैं कहता हूं कि जब गुरुदेव श्री ने ये आदेश दिया था तब वे वहां हाजिर क्यों नहीं थे? हाजिर नहीं होना ये भी तो एक अपराध है ना। क्यों? कल की क्लास में मैं नहीं आया था इसलिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। क्यों? एक गलती प्रश्न का उत्तर नहीं आता, दूसरी गलती क्लास में गैर हाजिर थे। जब सब आकर के बैठ के सामायिक में बैठ गए थे और आचार्य श्री के पास आदेश प्रसारित हो रहा था तब वे नगर में क्यों घूम रहे थे? इतना लेट क्यों आए? तो इतने लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी आना चाहिए था ना, रास्ते चलते आदमियों से क्यों उलझ गए कि साहब क्या करें, गुरु की आज्ञा का पता नहीं था? अरे भाई, वे श्रुत के सागर थे और साधारण आदमी को ये बात माफ की जा सकती है, श्रुत के सागर को इतना पता नहीं था कि रास्ता चलते किसी से उलझना नहीं चाहिए मुनिराजों को, अरे गृहस्थों को भी। क्यों? अपन लोग भी समझाते हैं ना एक दूसरे को कि जगह जगह उलझो मत, यदि तुम यहां से तांगे वाले से उलझे, रिक्शे वाले से उलझे, कुली से उलझे, तो गाड़ी चूक जाएगी। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? सामान्य ग्रस्त को यह बात मालूम है कि चाहे जहां बिना जान पहचान के रस्ते चलते, किसी को हम जानते ही नहीं कि ये कौन है, और जाकर के उसको बाप दादों की सब सुना देना कि बाप दादों की गालियां थोड़ी दी थी मां बहन की। अरे गालियों से बड़ी बात क्या थी कि तू पहले भ्रम में क्या था, वो उसकी दुर्दशा का चित्र किया था कि नहीं किया था, बोलिए। जब होंगे हम जानते हैं तुम्हारे बाप दादे कैसे थे, उनके यहां मुनीमी करते थे, तो वे क्या है, वही तो बात हुई ना। हम जानते हैं तुम क्या हो, पहले भ्रम में क्या थे, ख्याल में यही बात तो कही ना, पहले भ्रम में तो सब निगोद में थे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक कोई रास्ता नहीं है उनके बचाव का। यदि रास्ता होता तो उनके गुरुदेव भी उन्हें माफ कर देते। उन्हें क्यों दंड दिया कि जाओ तुम वहीं खड़े रहो, क्योंकि वे रात को मारने आएंगे, हम जानते हैं, तो सारा संघ क्यों पिटे, तुम्हें अकेले पिटना। यही कहानी यही बोलती है ना। मेरे दिल को यह बात स्वीकार नहीं है, मेरा मन नहीं मानता है कि अकंपनाचार्य ने ऐसा कहा होगा। तो क्या कहा होगा जो मैंने सुना है अकंपनाचार्य को कहते हुए और सत्सागर को सुनते हुए, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी किताब है ना अक्षम्य अपराध, उसमें मैंने एक कहानी है, आप कुछ भी कहो, मैं उसमें लिखा है कि जब वो एकदम चिंतित और गंभीर हो गए तो श्रुत सागर तो एकदम जोम में थे कि आज मैं अपना किस्सा सुनाऊंगा कि रास्ते में क्या हुआ तो तालियां बजेंगी। क्यों? हो सकता मुझे श्रुत सागर के अलावा एक उपाधि और मिल जाए, बादीप केसरी। क्यों ए? लेकिन जब उन्होंने देखा कि गुरुदेव तो एकदम गंभीर हो गए तो वे घबराए, पर आखिर सत सागर थे, उनकी समझने में देर नहीं लगी कि ये जो काम हुआ है ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, ये पुरस्कार के लायक काम नहीं हुआ है, ये सजा के लायक काम हुआ है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, अब आप जो भी प्राश्चित इसका दें मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। तो आचार्य श्री ने कहा कि सवाल गलती का और प्राश्चित का नहीं है, ये क्या कहने की तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें स्वीकार है मैं जो प्राश्चित दूंगा, ये तुम्हें जानता हूं कि मैं जो प्राश्चित तुम्हें दूंगा तुम स्वीकार करोगे, ये तो रोजाना का काम है, ये कहने की क्या जरूरत है। क्यों? मेरी चिंता का कारण दूसरा है कि वे जो लोग थे वो तीव्र कसाई लोग अब आकर रात्रि में संघ पर विघ्न करेंगे तो संघ संकट में है। मेरी चिंता का विषय तुम्हारी गलती और प्राश्चित नहीं है कि तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, मेरी चिंता तो मुनि संघ पर जो आपत्ति आएगी उसकी वो चिंता है। तब श्रुत सागर की यह समझ में आ गया कि बात तो सही है, भी आएंगे वो 700 मुनिराजों के ऊपर संकट डालेंगे तो आएंगे तो इसी रास्ते से, क्योंकि इसी रास्ते से गए थे, रास्ता तो यही है, तो उसी जगह यदि मैं जाकर के ध्यान करके खड़ा हूं तो वे वहीं रुक जाएंगे, मुझे देख करके जो कुछ करेंगे मेरा करेंगे, संघ सुरक्षित हो जाएगा। तो उनने स्वयं प्रस्ताव किया कि गुरुदेव मैं ये आज्ञा चाहता हूं कि मैं वहीं जाकर के ध्यान करूं जहां हमारा वाद विवाद हुआ था, तो वो लोग आएंगे तो जो कुछ होगा मेरे साथ होगा, संघ सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्यों? ये उनका प्रस्ताव था महावीर प्रसाद जी। किनका? तुमने सुना हो यदि उनको कहते हुए कि जा तुम वहां खड़े हो जा, मरना हो तो मर जाना, हम जिम्मेवार नहीं है, सारा संघ तेरे प्रति संकट में नहीं पड़ेगा। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता हो तो तुम सोचो, मुझे तो नहीं लगता, मैं जाता हूं और वहां खड़ा, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ ये आज्ञा चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि श्रुत सागर लाखों में एक होता है, हम किसी पर कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, हर आदमी श्रुत का सागर नहीं बन सकता, क्या समझे ना, लाखों में एकाध आदमी ऐसा होता है जो श्रुत सागर बनता है या कंपन बनता है। इसलिए मेरी इतनी मेहनत से तैयार किए हुए शिष्य को मैं मरने की आज्ञा दे दूं कि वहीं जाकर मरना, ये मेरे से संभव नहीं है, ये आज्ञा मैं नहीं दे सकता। कि गुरुदेव बात आज्ञा की नहीं है, अनुमति की है। क्यों भाषा आज्ञा की है लेकिन बात अनुमति की है। साहब हमको कुछ छुट्टी चाहिए, आपकी आज्ञा हो जाए तो हम अपने गांव चले जाएं। कि आजकल रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है, तुम जाओगे कैसे? कि मैं तो महीना भर पहले रिजर्वेशन करा दिया था, तो छुट्टी मांगने आ जाया। क्यों? अरे छुट्टी ये तो अनुमति है, आज्ञा नहीं है। जाना है, पक्का है, निर्णय है, सब पहले सब पक्का हो गया है। क्यों है? बात आज्ञा की नहीं, अनुमति की है। कि मैं तुम्हें मरने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? कि गुरुदेव मेरा आपने इतने अपराध माफ किए हैं, तो एक ये अपराध भी माफ कर देना कि मैं आपकी बिना अनुमति के जाता हूं और वहीं खड़ा रहूंगा। और वो चले गए। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? और जो हुआ वो मुझे नहीं बताना है, हैं? मजा आ गया। और वो सब तलवारें ऐसी रह गई, खिचड़ी हो गई, जीव हो गई, वो हो गई। क्यों है? आपको फिर मालूम है आगे की कहानी। या फिर वो जब वहां से चले गया मुनिराज का संग, उज्जैनी से हस्तिनापुर पहुंच गया, हैं? वहां भी चारों मंत्री भी हस्तिनापुर के यहां से निकाल दिए गए थे उज्जैनी से, तो वहीं जाकर के नौकरी करने लग गए थे। और उन्होंने देखा वही 700 मुनियों का संघ जो वहां था वो यहां आया है, तो वहां उसे बदला लेने की सोची। किसी कारण बस राजा पद्म जो वहां थे वो इतने खुश हो गए थे उन मंत्रियों से किसी काम से कि उन्होंने कहा तुम्हें बेटा जो मांगना हो उसे मांग लो। तो उन्होंने कह दिया था मेरा वचन खजाने में रखा जाए, मौके पर मांग लूंगा। ये तो आप जानते हैं पुरानी कहानियों का, ये तो खास बात है। के ने अपने वचन रखवा लिए थे, उनने भी रखवा लिए। और अब उनने 7 दिन का राज्य मांग लिया और इन पर घोर उपसर्ग किया। क्यों? क्या घोर उपसर्ग किया? उन्होंने उन मुनिराजों के चारों तरफ घास बोआ दी, गेहूं बोआ दिए, गेहूं बोआ दिए। उनको कैद करने के लिए इतना ही पर्याप्त था, कोई किले बनाने की जरूरत थोड़ी थी। क्योंकि मुनिराज हरी घास पर चलते नहीं है, तो जो वहां घास उगाएगी तो वे उसमें निकल के बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें कैद कर दिया। क्यों? आज ऐसा मौका आ जाए तो संकट काल में सब जा सकते हैं। क्यों? वो बंद हो गए। और फिर उसके अंदर ऐसा धुआं किया गंदे गंदे पदार्थों का कि जिससे उनका दम घुटने लग जाए, गला खराब हो जाए, ख्याल में आए ना, ये उपसर्ग उन्होंने किया। विष्णु कुमार को पता लगा, उन्हें तो पता ही नहीं था कि मेरे को विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। वो जो कोई छुल्लक महाराज गए, उन्होंने बताया कि ऐसा संकट आ रहा है और आप ही उस काम को कर सकते हो, क्योंकि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। तो उन्होंने ऐसा हाथ लंबा किया तो सुमेर पर्वत तक पहुंच गया। तो उन्होंने दीक्षा छेद करके बामनिया का भेष बनाया, बावन अंगुल का होते बामनिया में छिन्नगे लोग। वहां भी विष्णु भगवान को ऐसा ही करना पड़ा था, उन्होंने भी बामनिया का भेष बनाया था। देखो कहानी की एक रूपता, भगवान तो कुछ भी कर सकते थे ना, क्यों? लेकिन फिर भी वे बामनिया का भेष बना के आए, और अपने विष्णु कुमार भी बामनिया का भेष बना के आए। कहानी की एक रूपता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमने कहानी उनके यहां से चुराई है कि उनने हमारे यहां से चुराई है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि दोनों कहानियों में एक रूपता है। क्यों? अब किसने कहां से ली कि दोनों ने स्वतंत्र रूप से भी ऐसी लिखी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? फिर जाकर के राजा बलि से कहा, कोई काम बात से प्रसन्न हो गए तो कहा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो उन्होंने 2.5 पैर जमीन मांगी, 3 पैर, और फिर वो मांगी बावनिया बनके, वो दे दी उसने, तो ली सारा देश उसने नाप लिया उसको। क्यों, यही बात है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितना बढ़िया काम किया था उनने, कहे सब मुनियों का संकट दूर किया था, हमारे दिमाग में वही घूमता है, पहले मुनि पद छोड़ना अच्छी बात है, ये अच्छा काम था कि बुरा काम था। अच्छा, अब गृहस्थ भी हो गए थे तो झूठ बोलना अच्छी बात है, क्यों, बामनिया मन के मांगना और इतने बड़े बन के नाप के लेना, क्यों, और नहीं तो तेरे 3रा पैर कहां रखूंगे तेरी छाती पर। ये सब व्यवहार साधारण ग्रस्त के लिए भी उचित है क्या? ये साधारण ग्रस्त भी कहां रह पाए, क्यों, गिर के किस लेवल तक गए वे, उस वक्त सच्चे मुनि थे क्या? लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं और उस घटना को याद करके कि आपने ऐसा किया था, और जयमाला में खूब गागा का झांझा बजा बजा करके उस घटना को वर्ष चढ़ाते। माने सवाल इसका नहीं है, जो घटना उनको मुनि पद से नीचे गिराने वाली है, क्यों, उसका हम गीत गाते हैं, और जो घटना हमारे गौरव को बढ़ाने वाली है कंपनाचारी की, कि बिल्कुल ध्यान में मग्न रहे वो कपे भी नहीं, वो हमको कुछ गौरव प्रदान नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि में तो तोड़ू फोड़ू महाराज ही पसंद है, आत्म ध्यान करने वाले महाराज पसंद नहीं है। ये क्या है, ये जो किया उन्होंने, क्या किया, क्या हुआ, तो मरदान देते हो सास समझ लादों को, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो बहुत आती है, लेकिन करें क्या। मैं पूछता हूं कि 700 मुनिराजों में उनमें एक आध नहीं था इसके योग्य, अकंपनाचारी में ये ताकत नहीं थी, अकंपनाचारी को कोई सिद्धि नहीं हुई थी, क्यों, वे कुछ नहीं कर सकते थे, उनने तो कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं कहना, परिश्रय को बर्दाश्त करना, उपसर्ग को झेलना, ये मुनि धर्म है कि उसके लिए, क्यों, नहीं नहीं साहब, उन्हें अपने लिए थोड़ी किया था, पर के लिए किया था। अरे अपने लिए करते तो माफ के काबिल ही हो जाते, पर के लिए करना तो है नहीं। मैंने एक दर सुनाया था ना, एक मुनि महाराज थे, उनका नाम विमल सागर था, ये आचार्य विमल सागर नहीं, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी, सन 57 की, ठीक 50 साल हो गए। उन्होंने अशोक नगर में आकर के चौमासा किया था, 5 महीने का चौमासा था, उनका नाम विमल सागर था। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी क्या, कि भई हमको अपने पढ़ाने के विद्वान की व्यवस्था करोगे तो हम चौमासा यहां करेंगे। तो मेरी ड्यूटी लगी थी उन्हें पढ़ाने की, ख्याल में है ना। तो वो प्रवचन करते थे तो मुझे बगल में बैठाते थे, अपनी गद्दी के बगल में, उस वक्त 50 साल पहले, और बस वो 2-4 लेने पढ़ते थे, फिर कहते पंडित जी अर्थ करो, फिर मैं 1 घंटा बोलता था क्या। तो वो क्या करते थे, बराबर लोगों को आशीर्वाद देते रहते थे, जो आते थे ना लोग नमस्कार करते थे, मैं महाराज ये नहीं चलेगा, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं कि गलती कुछ बोल जाऊं तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो ना क्या। तो उनके भैया ठीक है बनने कर। फिर जब वो बोलते थे 2-5 मिनट को, तो एक उनका बिल्कुल सिस्टमेटिक तय था, वो दोहा मैं सुनाता हूं आपको याद है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अर पर हित के कारण ने कुना आवे लाज। ये सुनाते थे कई जगह, मैंने 10-20 दफे तो सुन लिया, आखिर मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा महाराज ये बात सच्ची नहीं है, कम से कम आपके लिए अच्छी नहीं है। क्यों, अरे मुनि धर्म में का जो भोजन है उसको शास्त्र में भिक्षा शब्द दिया है, भिक्षा वृत्ति कहा है उसे, और जब आप ऐसा करके निकलते हैं ना तो उसका अर्थ यही होता है कि श्रावक ये समझ लें कि मैं भोजन चाहता हूं, यदि मेरी विधि पूर्वक 32 अंतराय टालकर, 46 दोष टालकर, 90 भक्ति पूर्वक आहार मिले तो मैं ग्रहण करने को तैयार हूं, उसका नाम क्या है। और हमारे यहां साधु को भिक्षुक कहते हैं, क्यों कहते हैं, अपने तन के लिए मांगने, मैं मर जाऊंगा मांगूंगा नहीं, कैसी बात करते हो आप, और दूसरे के लिए मांगने के लिए मुझे लाज नहीं आती है। दूसरे को मांगने की तो जरूरत ही नहीं, तू मार ही नहीं सकता, बचा ही नहीं सकता, क्यों? लेकिन मेरे से कहो तो मैं तो ऐसा बोलूं, मर जाऊं मांगू नहीं पर के हित के काज, और अपने हित के कारण मैं कुना आबे लाज। बोलो क्या सही है हुकुमचंद जी, कभी सोचा है? ये तो हमारी परंपरा में, गृहस्थ धर्म में भी ऐसा नहीं है ना कि अपने आजीविका के लिए तो आपको धंधा करना ही पड़ेगा ना, शुद्ध सात्विक। लेकिन हम परोपकार के लिए करोड़ों रुपया कमाएंगे पाप कर करके, क्यों फिर धर्म करेंगे? ये उचित है? कि साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न घर से जाए भूखा जाए, बस इतना बहुत है न्यायपूर्वक। ये तो कबीर जैसा अजन गृहस्थ संत, संत तो इसलिए बोलता हूं उनके यहां होता है, लेकिन वो तो बाल बच्चों वाला था, उसके बेटे का नाम कमाल था, वो भी ऐसा कहता है इतना दीजिए। और तू कहता है मैं सबके लिए, फिर दूसरों के लिए मांगने में लाज नहीं आएगी, तो वो तो चक्रवर्ती की संपत्ति भी कम होती है, क्यों? सारी दुनिया तो कितनी दुखी है, उसके लिए कितनी जरूरत है, क्यों? और मैं किस किस के दुख को दूर कर सकता हूं, उसका तो अंत ही नहीं है, है? मैं अपनी व्यवस्था के लिए सोचूं तो मेरी कुछ मर्यादा अंत हो सकती है, अनुवृत्त लू ना, कभी मैं इतने में अपना खर्चा चला लूंगा, इसे ज्यादा नहीं रखूंगा, क्यों? और फिर मैं सारे जगत के लिए, इसलिए तो सारे जो ब्रह्मचारी हैं और जो संत हैं, मैं नाम नहीं कहना चाहता हूं किसी का, कि जो घर में दो कमरे मुश्किल से थे और उससे ज्यादा बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते थे, अब उन्हें 200-200 कमरे कम पड़ने लग गए हैं, क्यों? पर का तो अंत नहीं है ना। महाराज ने वो बंद कर दिया, मेरी बात सुनी, 1957 की बात है। दो भादों थे उस वर्ष, या दो सामन होंगे, इसी वजह से 5 महीने का चौमासा था। तो मैं आपसे एक कह रहा हूं कि हमारे सामने 3 तरह के मुनिराज हैं। एक का प्रतिनिधित्व करते हैं आचार्य अकंपन और उनके 700 मुनिराज, दूसरा का प्रतिनिधित्व करते हैं श्रुत सागर, और तीसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं विष्णु कुमार। ख्याल में है ना, ये तो सिद्धोपयोगी है कंपनाचारी, तो जो अपने आत्मा के ध्यान में रहे मगन, उन्हें बाहर देखा ही नहीं क्या होता है, क्यों? यही अर्थ है ना उसका, ये तो सिद्धोपयोगी संत हैं, सबसे बढ़िया तो यही है ना। और दूसरों को समझाने में उलझ गए, अब क्या समझाया उसको जाने दो, मेरी कोई आत्मा समझाने नहीं उलझ गए थे, त्रिकाली ध्रुव पर से भिन्न पर्याय से भिन्न, क्या समझाया वो तो कहानी में आपने सुनी है ना। तो ये काल में उलझ गए, परोपकार में, लेकिन जिनको समझाया उनके उपकार की भावना, तो ये समझ जाए इनका जो चित्त निकल जाए मुनिराजों के प्रति, क्यों? कई जैनियों के मुनिराज मूर्ख होते हैं, कुछ समझते नहीं है, ये न समझते, मैं बता दूंगा देखो मैं कितना समझता हूं, क्यों? यही था ना, वो क्या कहे रास्ते में बात करते जाते थे वे दोनों आदमी, कि देखो अपन गए, सबने नमस्कार किया, उन्हें किसी ने आशीर्वाद तक नहीं दिया, बिल्कुल चुप, मौनम मूर्खस्य भूषणम, मूर्खता छिपाने का ऐसे बढ़िया उपाय और क्या है, बोलते तो कुछ मालूम पड़ता कि जानते हैं कुछ के नहीं जानते हैं। तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या क्या बर्दाश्त नहीं हुआ, कि हमको जैन मुनियों को ये मूर्ख समझ रहे हैं, तो उनको क्या समझाने का भाव आया, कि हम मूर्ख नहीं है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्हें आत्मा समझाने का भाव नहीं आया, जैन मुनि मूर्ख नहीं होते हैं, हम कितने विद्वान हैं ये समझाने का भाव आया, अपनी पर्याय समझाने का भाव आया, त्रिकाली ध्रुव समझाने का भाव नहीं आया, क्या है सुबह सुबह तुम सोच लेना, लेकिन दूसरों को समझाने का भाव आया है? क्यों, यह क्या बात थी? वो यदि ये जान लेते कि जैन मुनि अपने को समझते नहीं हैं, तो उसमें श्रुत सागर का क्या अपमान होगा, क्या आकंपन का क्या हो जाता, और कितना झगड़ा बच जाता, दुनिया कुछ भी मानती रहे, हम हर एक बात में ऐसी बात नहीं है जे कि रेल के डब्बे में एक मियां जी बैठे जाते थे दाढ़ी वाले, और बार बार दाढ़ी पे हाथ फेरते थे, एकदम बड़ा संभालते थे दाढ़ी, ये मूछ वाले दाढ़ी वाले जितने होते हैं ना हमेशा हाथ फेरते ही रहते हैं, जैसे महिलाएं होती थी घूमर वाली निरंतर संभालती रहती हैं, अभी भी ऐसे चलते ही रहता है उनका काम, वो पल्लू गिरता रहता है अभी संभालती रहती हैं, ऐसे मूछ वाले मूछ हटते रहते हैं, दाढ़ी वाले दाढ़ी बनाते रहते हैं, अपन को तो कुछ झंझट है ही नहीं समझे। तो ऐसा बार बार फेर रहे थे, तो चार लड़के कॉलेज ही सामने बैठे थे, तो आपस में बात करने लगे उनकी मजाक उड़ाने के लिए, आपस में एक लड़का दूसरे से कहने लगे आप जानते हो कि दाढ़ी वाले कितने मूर्ख होते हैं, दूसरा बोला नहीं नहीं मूर्ख नहीं होते, बहुत समझदार बुद्धिमान होते हैं, अनुभवी होते हैं, और सफेद दाढ़ी वाले तो महान अच्छे होते हैं, नहीं नहीं सबसे ज्यादा मूर्ख तो सफेद दाढ़ी वाले ही होते हैं। तो इनकी एक बहस करने लग गए उनके सामने जानबूझ के क्या, तो उनको बहुत गुस्सा आया, किनको, दाढ़ी वाले बाबा जी को, तो एकदम उन्होंने अपनी जेब में से माचिस निकाली और उसमें से जलाई और दाढ़ी में आड़ लगा ली और ऐसी पकड़ ली डाली, तो जो दाढ़ी जली तो हाथ जलने लग गया, तो हाथ छोड़ दिया, तो हाथ भी जल गया, दाढ़ी भी जल गई, चेहरा भी जल गया। अब बोले अब बोलो कि दाढ़ी वाले मूर्ख होते हैं, तब भी बोले कि अब क्या बोल रहा, अब तो तुमने प्रूफ सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया तुमने क्या कि दाढ़ी वाले मूर्ख होते हैं, अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह गई। अरे भाई हम कोई कुछ कहे जगत वाला, हम हर बात को सिद्ध करने के लिए तैयार थोड़ी बैठेंगे, हमें कोई मूर्ख कहे तो हम विद्वत्ता सिद्ध करने को तैयार हो जाएं, क्या ये क्या ये कोई बात हुई ना, ऐसे जगह जगह उलझना अच्छी बात थी क्यों, लेकिन हमको वो मैं तोड़ जवाब दिया है ना, हम तो उसी के गीत गाते हैं ना हमेशा, वो गोपाल दास बरिया के पास, अथवा पंडित गोपाल दास जी बरिया के पास एक आदमी आया, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम तो गोपाल दास ही है, तो उन्होंने कहा सम तत्पुरुष से नहीं है बहुब्री से है, गोपाल जिसका दास है उसका नाम गोपाल दास, गोपाल का दास नहीं, गोपाला दासा यस सा गोपाल दासा, हाँ हमारा पंडित कितना महान था, मुझे तोड़ जवाब, मुझे तो जवाब देने का नाम पंडित है क्यों, जवाब नहीं देते तो गोपाल दास बरिया विद्वान नहीं रहते, क्या फर्क पड़ता था बोलिए, अपनी विद्वत्ता का उपयोग अपने शिष्यों को समझाने के लिए करते ना, वहां करने की क्या जरूरत थी, लेकिन हम उनके गीत गाते हैं, और अकंपनाचारी बेचारे क्यों, अब उन्हें तो मुनिराजों के अपमान नहीं हो, मुनिराजों को मूर्ख ना समझा जाए इसके लिए उनने बदला लिया, और विष्णु कुमार ने कि वे तो आत्म ध्यान में थे, वे तो सुरक्षित थे, उनको क्या था ख्याल में है ना, कौन से 700 मुनिराज, और इन्हें उनको बचाने का भाव आया, और उनके बचाए उनका मुनिधर्म बचाने के चक्कर में अपना मुनिधर्म छूट गया, और हम उनके गीत गाते हैं और उसी घटना के लिए, इसका मतलब हम किस चीज को अच्छा समझते हैं, अरे जिस घटना के लिए उन्हें प्राश्चित लेना पड़ा, जिस घटना के लिए उन्हें दीक्षा छेद करनी पड़ी, हम उसी के गीत गाते हैं, हमारी समझ का है, मैं अपनी समझ की आलोचना कर रहा हूं, किसी मुनिराज की नहीं, ना विष्णु कुमार की, ना शुद्ध सागर की, उनके बारे में जो हमारी समझ है उसकी बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं ना कि सीता जी को वनवास देके तीन तीन बार रामचंद्र जी जितने पछताए थे, हम उसी के लिए रामचंद्र जी कितने महान थे, उनने धोबी के कहने पर अपनी सीता जी को छोड़ दिया, ये महानता की बात थी, दुनिया में धोबियों की कमी है, हम भी ऐसे ही महान बन जाए, अब यार कोई धोबी आए हर हर घर एक का घर बिगड़ जाए क्यों, तो क्या करें धोबी को पीटने लग जाए, क्या जरूरत है ना धोबी से उलझने की, नो रिएक्शन, बगने वाले बगते हैं, अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए ना, कि देखो आपने सुना होगा क्या कि वो चारों तरफ घास उगाई थी ना, गेहूं बोए थे, तो जिससे मुनिराज बाहर नहीं निकल के भाग पाए, तो जब इन्होंने वो राजा बलि का वध कर मतलब हरा दिया, उसे वध तो नहीं कहो समझे ना, तो जीत हो गई। तो अब मुनिराजों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले किस बात की जरूरत थी कि वो घास उखाड़ी जाए, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो तो घास पर चलेंगे नहीं, तो उनकी कैद कैसे, यानी सबसे पहले गेट खोला जाए ना जेल का है? तो जो वहां श्रावक मौजूद थे उन्होंने फटाफट वो घास उखाड़ी, क्या समझे ना, और घास उखाड़ कर उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई तो वे भागे, और जो गांव में बुजुर्ग लोग थे ना उन्हें खबर दी कि उपसर्ग दूर हो गया है। कैसे हो गया, कैसे हो गया, वैसे तुम क्यों कर, क्या प्रमाण है कि देखो वो घास बोई थी ये हम उखाड़ लाए, रास्ता हो गया। क्या उसे हमारे गांव में बोलते बुजरियां कजरियां, बोलते क्या बोलते हैं, होते हैं ना, तो वो लाला करके नव युवक अपने बुजुर्गों को देते हैं और उनके पैर छूते हैं। क्या है वो, इस बात का प्रतीक है कि वे वहां से उखाड़ उखाड़ के ला करके बुजुर्गों को बता रहे थे, वे तो बेचारे घर में बैठे थे उपवास करके। क्या उपवास करने की जरूरत नहीं है, मुनियों राजों को आहार बनाओ, खुद भी आहार की व्यवस्था करो, वो उपसर्ग दूर हो गया है। व्हाट इज द प्रूफ, ये प्रूफ है तो भुजरिया देने का, कजरिया देने का जो रिवाज चल पड़ा वो इस वजह से चल पड़ा, समझे ना। अब जब लोगों ने कहा कि इतने दिनों के थे धुआं गले में, गले खराब हो गए थे, तो उन्होंने फिर ऐसी चीज खिलाओ कि नहीं तो गले में दर्द होए, क्यों, तो उन्होंने फिर ऐसी चीज बनाई कि मुंह में रखते ही आज की मैगी आप समझ गए ना, क्या वो पुराने जमाने में गेहूं के आटा से वो बनाते थे ना, क्या आप समझ लोगे ना, जो जो भी अलग अलग नाम रखते थे उसका है? वो उन्होंने बनाया और उसकी खीर खुद खाई और उन सबको खिलाई, वो ये परंपरा चल गई। मेरा उद्देश्य तो इस पूरी कहानी में आपके सामने प्रस्तुत करने में सिर्फ इतना ही है कि आप वो उन्हीं की गलती, कहानी में गलती निकालना मेरा उद्देश्य नहीं है, जैसी कहानी है वो ठीक है, लेकिन उसमें जो तीन तरह के मुनिराज हैं, हमने अपनी बुद्धि में किसको कौन सा नंबर दिया और उससे हमारी बुद्धि का नाप सामने आता है। उनने तो कोई ऐसी नंबरबाजी की नहीं थी, विष्णु कुमार से जाके पूछते कि महाराज आप बड़े मुनिराज हैं कि अकंपन, क्या बोलते, बोलो मैं आपसे पूछता हूं। अरे वे तो अभी अकंपन हैं, आचार्य हैं, और हमें तो अभी दीक्षा लेनी है, यही कहते कि नहीं कहते, वे तो हीरो हैं, हम जीरो हैं, कहते कि नहीं। सत सागर से पूछते तो क्या कहते, क्या कह रहे, महान तो वो है, कहते कि नहीं कहते, और हम, अरे साहब वो काय के चुपचाप बैठे रहे, काम तो आपने करके दिखाया, हम तो आपकी ही पूजा करेंगे, आप कुछ भी कहो हम कुछ मानने वाले नहीं हैं। तो ये हमारी बुद्धि का जो दिवालियापन है वो मैं निकालना चाहता हूं कि मुनिराज कौन अच्छे होते हैं, आत्म का ज्ञान ध्यान करने वाले, के दूसरों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, के दूसरों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग नहीं, नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। और मुनिराज तो तीनों करके पूजों की करना चाहिए, क्यों कि दीक्षा छेद तो श्रुत सागर की तो हुई नहीं थी, और विष्णु कुमार की दीक्षा छेद हो गई थी तो फिर भी दीक्षा ले ली थी, तो जब तक दीक्षा छेद नहीं हुई थी तब तक के विष्णु कुमार पूज्य हैं कि नहीं, और द्वारा दीक्षा ले ली वे विष्णु कुमार पूज्य हैं कि नहीं, फिर मतलब समझ गया ना। श्रुत सागर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो पहले तक पूज्य थे कि नहीं, और उसके बाद भी पूज्य हैं कि नहीं, उस गलती के कारण नहीं, गलती स्वीकार करने के कारण। तो हम तीनों के कहां विरोधी हुए, तीनों की पूजा करो, क्योंकि वे मुनिराज तो थे ना तीनों। लेकिन बात तो ये होती है कि उनकी उस घटना को याद करके हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमारा मतलब क्या है, सवाल इसका है नहीं है कि उनकी पूजा की कि नहीं की। आप सबसे बढ़िया चीज किस बात को याद रखते हो, बोलो, 5 साल आप यहां पढ़ने आए और पढ़ने में आपने यहां पर एक दफे आपको निकाल दिया गया था, 2 घंटे तक पीछे ब्रेंच पर खड़ा रखा गया था, क्यों, फिर आपने 100 दफे माफी मांगी थी, तब द्वारा मुश्किल से भर्ती हुए थे, तो अपनी आत्मकथा में यही लिखोगे ना सबसे पहले, क्यों कि जब आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे और आपको पुरस्कार दिया गया था, क्यों और अन्ना जी ने भरी सभा में आपकी प्रशंसा की थी, इन दोनों बातों में आप किस चीज का प्रदर्शन करना चाहोगे मुझे बताओ। तो वो तो श्रुत सागर के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, वो उनके गौरव की बात थी। क्यों? वो तो विष्णु कुमार के जीवन का सबसे बड़ी गलती थी। क्या वो उनके गौरव की बात थी? गौरव की बात तो वो थी जब वे आत्मा के ध्यान में मगन थे। श्रुत सागर भी होते थे, हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाते थे, और विष्णु कुमार भी जाते थे जब मुनिराज थे। तो हम तो विष्णु कुमार मुनिराज को करें ना पूजा, लेकिन हम तो उस बीच के उस हिस्से की पूजा करते हैं जब वे मुनिराज नहीं रहे थे। मेरा पॉइंट समझ आया? क्या कहना चाहता हूं मैं? आप गंभीरता से विचार करना मेरी बात पर, तो आपको बात ख्याल में आएगी। अन्यथा इस कहानी में से कितना रहस्य निकलता है यदि हम गंभीरता से विचार करें। और आज रक्षाबंधन के दिन सारे देश में ऐसा कहा जाता है कि देखो विष्णु कुमार ने मुनियों की रक्षा की थी, और आज भी हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है कि इसलिए सब मुनियों को उसकी रक्षा के लिए उतर आना चाहिए। और संकट लाने वाला बलि राजा कौन है? क्या ना जिनके हाथ पैर हैं, ना जो बोल सकते हैं, ना जो लड़ सकते हैं, ना जो कुछ कर सकते हैं, अपने घर में शांति से बैठे आत्मा की बात सुनते सुनाते हैं करते हैं, वो बलि बन गए, उनसे उनका संकट आ कहाँ? संकट आ गया, काहे का संकट है? किसको संकट है? क्या किया? क्या समझे ना? अब उनकी रक्षा के लिए, अरे भाई आत्मा जो अपना उपयोग बाहर जाता है इससे रक्षा करनी है। क्या समझे ना? तो इस कहानी का उद्देश्य जो है, हम गंभीरता से विचार करेंगे तो उसमें हमारा बहुत तत्व हमें सीखने को मिलेगा, सीखने को मिले इसी भावना के साथ में अपनी बात।